एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसे पढ़कर शायद किसी पर भी भरोसा करने से पहले दो बार सोचना पड़ेगा।
हाँ बिल्कुल, ये कहानी है ही ऐसी एक धोखेबाज की।
एक धोखेबाज की, लेकिन असली मजा तब आता है जब वो झूठा इंसान सच में किसी से प्यार करने लगता है।
और ये कोई मामूली थ्रिलर नहीं है। हम बात कर रहे हैं एशली एल्स्टन के उपन्यास फर्स्ट लाई विंस की। ये जनवरी 2024 में आते ही मतलब एक सनसनी बन गया था।
हाँ, मैंने सुना था लेखिका तो पहले यंग एडल्ट फिक्शन के लिए जानी जाती थी।
बिल्कुल, और इस एक किताब ने उन्हें थ्रिलर की दुनिया के बड़े नामों में शामिल कर दिया।
जाहिर है, आते ही रीस विदरस्पून के बुक क्लब में चुना जाना, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर लिस्ट में छा जाना, ये कोई छोटी बात नहीं है।
नहीं बिल्कुल नहीं।
तो आज हम इस कहानी की सिर्फ घटनाओं को नहीं जानेंगे बल्कि उन परतों को खोलने की कोशिश करेंगे जो झूठ, पहचान और आज़ादी के सवालों से बुनी गई हैं।
चलिए शुरू करते हैं।
तो कहाँ से शुरू होती है ये कहानी?
कहानी हमें ले चलती है लुइसियाना के एक बहुत ही कह सकते हैं अमीर और खूबसूरत शहर लेक फॉर्बिंग में। और हमारी जो नायिका है वो है ईव पोर्टर। पहली नज़र में उसकी ज़िंदगी एकदम सपने जैसी लगती है।
सपने जैसी मतलब?
मतलब एक बड़ा सा घर, एक कामयाब और बहुत प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड, और शहर के जो अमीर लोग हैं उनमें उसकी अच्छी खासी पहचान है। सब कुछ परफेक्ट लगता है।
और ये परफेक्ट जिंदगी, ये तो थ्रिलर उपन्यासों में हमेशा एक चेतावनी जैसी होती है ना?
बिल्कुल, जैसे तूफान से पहले की शांति।
जो जितना चमकदार दिखता है उसके पीछे का अंधेरा उतना ही गहरा होता है।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ईव पोर्टर का ये पूरा वजूद ही एक झूठ है।
अच्छा?
हाँ, उसकी मुस्कुराहट, उसके दोस्त, यहाँ तक कि उसका नाम, सब कुछ एक बहुत ही सावधानी से बुना हुआ जाल है।
तो वो असल में है कौन?
असल में वो एक शातिर धोखेबाज है, एक फिक्सर जो एक रहस्यमयी बॉस के लिए काम करती है। उसका नाम है मिस्टर स्मिथ।
तो कहानी के तीन मुख्य स्तंभ हो गए, एक तो हमारी नायिका ईव पोर्टर,
जो असल में ईव पोर्टर है ही नहीं।
सही, वो बस एक किरदार निभा रही है, और दूसरी तरफ है उसका निशाना रायन समनर।
हाँ, एक सफल और भला इंसान जो ईव से सच में प्यार करता है, पर वो इस बात से अनजान है कि वो खुद एक धोखे का शिकार है।
और इन दोनों के ऊपर है ये अदृश्य शक्ति मिस्टर स्मिथ।
बिल्कुल, वो ईव का गुरु भी है और मालिक भी। वो सिर्फ फोन पर निर्देश देता है और ईव की जिंदगी को पूरी तरह से कंट्रोल करता है।
मतलब ईव की जिंदगी एक ऐसे कांच के महल जैसी है जिसे बनाया तो उसने खुद है,
लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है।
तो एक धोखेबाज के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है?
शायद यही कि वो अपने ही बुने जाल में इमोशनली फंसने लगे।
और ईव्स के साथ ठीक यही हो रहा है।
हाँ, उसका मिशन था रायन के करीब जाना, पर वो उसके इतना करीब आ जाती है कि उसे सच में रायन से प्यार हो जाता है।
तो ये कहानी का पहला बड़ा संघर्ष है।
हाँ,
अंदर का संघर्ष।
बिल्कुल, जिस नकली जिंदगी को वो जी रही थी अब वो उसे असली लगने लगी है और वो उसे खोना नहीं चाहती।
जबकि मिस्टर स्मिथ का सबसे बड़ा नियम यही था।
हाँ, कभी किसी से भावनात्मक रूप से मत जुड़ना, और ईव पहली बार ये नियम तोड़ रही है।
तो यहीं पर पहचान का संकट खड़ा हो जाता है ना?
हाँ।
वो ईव पोर्टर का मुखौटा इतने समय से पहने हुए है कि अब उसे वही असली लग रहा है।
उसे डर है कि अगर ये मुखौटा उतरा तो शायद उसके नीचे कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन एक धोखेबाज के लिए सिर्फ अंदर का खतरा तो काफी नहीं होता।
नहीं,
कहानी में बाहर से भी एक भूचाल आता है।
अच्छा, किस तरह का?
एक और औरत के रूप में जो शहर में आती है और खुद को ईव पोर्टर बताती है।
अरे वाह, यहां से तो मतलब कहानी पूरी तरह पलट गई होगी। अब एक ही शहर में दो ईव पोर्टर।
हाँ, और ये कोई आम दिमागी खेल नहीं है।
ये दिमागी खेल की शुरुआत है।
बिल्कुल, ये जो नई महिला है जिसे हमारी नायिका मन ही मन डेवॉन बुलाती है, वो भी मिस्टर स्मिथ के लिए ही काम करती है।
मतलब वो ईव की जगह लेने आई है।
एग्जैक्टली, ये एक कैट एंड माउस गेम है, लेकिन लेखिका इसे एक नया मोड़ देती हैं।
क्या मतलब? इसमें नया क्या है?
नया ये है कि यहाँ चूहा भी शिकारी है। दोनों को एक ही गुरु ने सिखाया है, तो वो एक दूसरे की चालें पहले से जानती हैं।
तो ये दिमागी शतरंज का खेल बन जाता है।
हाँ, डेवॉन बहुत चालाकी से ईव की बनाई दुनिया को बर्बाद करने की कोशिश करती है। रायन के दोस्तों के मन में शक के बीज बोती है।
इस दिमागी खेल के बीच में लेखिका एक बहुत ही दिलचस्प काम करती हैं। वो हमें अतीत में भी ले जाती हैं। ये ड्यूल टाइमलाइन क्यों?
ये बहुत ही चालाक तकनीक है। वर्तमान की कहानी हमें तनाव में रखती है, लेकिन अतीत हमें बताता है कि ईव, मतलब हमारी नायिका, इतनी खतरनाक और काबिल क्यों है।
अच्छा,
इन्हीं फ्लैशबैक से हमें उसका असली नाम पता चलता है,
जो कि ईव पोटर नहीं है।
नहीं, उसका असली नाम है लुका मारिनो।
लुका मारिनो।
हाँ, और हम उसके पिछले मिशन देखते हैं, जिनसे पता चलता है कि वो कितनी अकेली और अनुशासित रही है। जब हम अतीत में उसकी ट्रेनिंग देखते हैं, तो हमें समझ आता है कि रायन का प्यार उसके लिए इतना जरूरी क्यों है।
क्योंकि शायद वो उसकी जिंदगी की पहली असली चीज है।
बिल्कुल।
और यही हमें मिस्टर स्मिथ के उस नियम की गहराई भी समझ आती है, कभी किसी से भावनात्मक रूप से मत जुड़ना।
हाँ,
ये सिर्फ एक आदेश नहीं है, ये लुका के दिमाग को कंट्रोल करने का एक तरीका है।
सही कहा। मिस्टर स्मिथ जानते हैं कि भावनाएं ही एक धोखेबाज को कमजोर बनाती हैं, तो ये नियम एक इमोशनल हथियार है।
और अब वर्तमान में लुका उसी हथियार के खिलाफ लड़ रही है।
हाँ, और कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब लुका डेवॉन के खतरे से बचने के लिए अपने मिशन की गहराई से जांच करना शुरू करती है। मिस्टर स्मिथ ने तो उसे यकीन दिलाया था कि रायन किसी क्राइम में शामिल है,
और उसे सबूत इकट्ठा करने हैं, लेकिन उसे कुछ और ही मिलता है ना?
कुछ और ही नहीं, बल्कि पूरा सच ही उल्टा निकलता है।
उसे पता चलता है कि असली अपराधी रायन नहीं,
बल्कि उसका पिता है।
हाँ,
उसका ताकतवर और भ्रष्ट पिता रिचर्ड सम्नर। वो अपने शिपिंग बिजनेस का इस्तेमाल सालों से मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे काले कामों के लिए कर रहा है।
और इसके साथ ही एक और बड़ा राज खुलता है जो रायन से जुड़ा है। पहली नजर में तो वो काफी भूला लगता है।
यही तो कहानी का एक और दिलचस्प मोड़ है। रायन भूला नहीं है।
अच्छा,
वो अपने पिता के काले कारनामों के बारे में जानता है और खुद ही अंदर ही अंदर अपने पिता के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था।
तो उसका भोलापन भी एक तरह का मुखौटा था।
हाँ, अपने पिता से खुद को बचाने के लिए वो भी अपने ही पिता के जाल में फंसा हुआ था।
जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सच में हैरान रह गया था। मतलब पूरी कहानी का मतलब ही बदल गया। जिन दो लोगों को हम शिकारी और शिकार समझ रहे थे,
वे दोनों ही किसी तीसरे के जाल में फंसे हुए थे।
और यहीं पर सबसे बड़ा पर्दाफाश होता है मिस्टर स्मिथ की असलियत।
बिल्कुल। उसका असली मकसद रायन या उसके पिता के अपराधों को सामने लाना था ही नहीं।
तो फिर क्या था?
उसका मकसद था बदला लेना। वर्षों पहले रिचर्ड सम्नर की वजह से मिस्टर स्मिथ की पत्नी और बेटी की मौत हो गई थी।
तो ये पूरी साजिश, लुका की ट्रेनिंग, ये मिशन, सब कुछ न्याय के लिए नहीं था?
नहीं, ये दशकों पुराने प्रतिशोध की एक कहानी थी, और लुका इस खेल में सिर्फ एक मोहरा थी, एक हथियार।
और इस खुलासे से लुका पूरी तरह हिल जाती होगी।
हाँ, उसे एहसास होता है कि जिस मिस्टर स्मिथ को वो अपना बचाने वाला समझती थी, नहीं बल्कि उसे एक बड़े और खूबसूरत पिंजरे में कैद कर लिया था और उसे यकीन दिलाया था कि वो उन सलाखों से प्यार करे।
और यहां उसकी वफादारी एक झटके में टूट जाती है।
बिल्कुल।
यहां से लुका के किरदार में एक जबरदस्त बदलाव आता है। अब वो किसी की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहती।
वो अपने भाग्य की रानी बनने का सफर शुरू करती है,
और इस लड़ाई में वो एक बहुत बड़ा जुआ खेलती है।
हाँ, वो रायन को चुनती है, और कहानी का सबसे तनावपूर्ण क्षण तब आता है जब लुका रायन को अपनी पूरी सच्चाई बता देती है।
सब कुछ, अपना असली नाम, अपना काम, मिस्टर स्मिथ,
सब कुछ।
ये एक बहुत बड़ा दांव था। वो उस इंसान को सच बता रही थी जिसे धोखा देने के लिए उसे भेजा गया था। अगर रायन उस पर विश्वास नहीं करता,
तो लुका का खेल वहीं खत्म हो सकता था।
कहानी का पूरा आधार विश्वास पर टिक जाता है।
लेकिन रायन, जो खुद धोखे के जाल में फंसा था, वो लुका की सच्चाई पर विश्वास करता है। वो समझ जाता है कि वे दोनों ही शिकार हैं,
और यहीं से एक अप्रत्याशित गठबंधन बनता है।
हाँ, अब उनका सिर्फ एक लक्ष्य है, रिचर्ड को बेनकाब करना और मिस्टर स्मिथ से हमेशा के लिए आजादी पाना।
और इस लक्ष्य को पाने के लिए वे एक अंतिम धोखे यानी फाइनल कॉन की योजना बनाते हैं।
हाँ, ये उपन्यास का क्लाइमैक्स है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब लुका अपनी उन्हीं क्षमताओं का इस्तेमाल कर रही हैं जो मिस्टर स्मिथ ने उसे सिखाई थीं।
लेकिन इस बार किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि न्याय और अपनी आजादी के लिए।
ये योजना बहुत खतरनाक थी। उन्हें एक साथ तीन दुश्मनों को मात देनी थी।
रिचर्ड सम्नर, जो एक अपराधी है,
मिस्टर स्मिथ, जो उसका गुरु है
और उसकी हर चाल को समझता है,
और डेवॉन, जो अभी भी उन पर नजर रखे हुए है।
मतलब एक ऐसी बिसात जिस पर एक गलत चाल का मतलब मौत हो सकता था।
हाँ, और अंत में वो कामयाब होते हैं।
कैसे?
लुका मिस्टर स्मिथ के तरीकों का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करती है। वो ऐसी जानकारी लीक करती है जिससे रिचर्ड और मिस्टर स्मिथ आमने सामने आ जाते हैं।
और ठीक उसी समय
FBI की टीम, जिसे लुका और रायन ने खुफिया तरीके से सूचना दी थी, वहां पहुंच जाती है। रिचर्ड सम्नर गिरफ्तार हो जाता है।
और मिस्टर स्मिथ का क्या होता है? उसका बदला तो पूरा हो गया।
उसका बदला पूरा हो जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो खुद बेनकाब हो जाता है और उसे गायब होना पड़ता है।
और इस तरह लुका आखिरकार आजाद है।
हाँ, सारे झूठ खत्म हो चुके हैं। धोखे की आग में तपकर अब उसके और रायन के रिश्ते के पास सच्चाई और विश्वास पर आधारित एक नया भविष्य बनाने का मौका है।
और यहीं पर उपन्यास का शीर्षक फर्स्ट लाइव विंस एक नया मतलब लेता है। पहला झूठ शायद आपको खेल में आगे ले जाए, लेकिन आजादी तो आखिरी सच से ही मिलती है।
बिल्कुल, पहला झूठ भले ही जीतता हो, लेकिन अंतिम सत्य ही आपको मुक्त करता है।
ये कहानी सिर्फ एक थ्रिलर से कहीं ज्यादा है ना? घूम फिरकर उसी सवाल पर आती है, हम कौन हैं, जो हम दुनिया को दिखाते हैं या जो हम बनना चुनते हैं।
हाँ, लुका का किरदार यही दिखाता है कि पहचान कोई स्थिर चीज नहीं है, इसे हम अपने चुनाव से गढ़ते हैं।
और इसी से जुड़ा है स्वतंत्रता और नियंत्रण का विषय।
बिल्कुल, लुका और रायन दोनों ही ताकतवर लोगों के कंट्रोल में जी रहे थे।
कहानी ये बताती है कि असली आज़ादी सिर्फ बाहरी बंधनों से नहीं, बल्कि उस मानसिक नियंत्रण से मुक्ति पाने में है जो दूसरे हम पर डालते हैं।
अपनी कहानी का लेखक खुद बनने में है।
और आखिर में बदला और इंसाफ के बीच की वो बारीक लाइन। मिस्टर स्मिथ का चरित्र एक दुखद उदाहरण है कि कैसे बदला लेने की इच्छा इंसान को खुद एक
राक्षस बना सकती है। उसका दर्द असली था, लेकिन उसके तरीकों ने उसे भी उसी अंधेरे में धकेल दिया जिससे वो लड़ रहा था।
सच है, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी शुरुआत चाहे कितनी भी झूठी क्यों न हो, हम हमेशा सच्चाई और एक प्रमाणिक जीवन के लिए लड़ने का विकल्प चुन सकते हैं।
और ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम सब अपने जीवन में कौन से मुखौटे पहनते हैं,
और उन मुखौटों के पीछे के असली चेहरे को आज़ाद कराने की हिम्मत हम में है या नहीं।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।